ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भवन में कल केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पड़ोसी देशों के नेता बनेंगे विशिष्ट अतिथि। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली में ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध। राष्ट्रपति गार्ड समारोह भी किया गया रद्द। कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, नीट परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी। ग्रेस अंकों की समीक्षा के लिए समिति का किया गया गठन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुदिता। केंद्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 पर होगा। राष्ट्रपति श्री मोदी तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। श्री मोदी कल राष्ट्रपति से मिले थे और नई सरकार के गठन का दावा पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उन्हें श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा के संसदीय दल के नेता चुने जाने का पत्र सौंपा था। प्रतिनिधिमंडल ने श्री मोदी के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले श्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री तेजसिंग तोबगे समारोह में शामिल रहेंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस ने शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सुपर्णा सैकिया, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिल्ली के ऊपर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन और गर्म हवा के गुब्बारे सहित उप पारंपरिक हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध 9 और 10 जून को लागू रहेगा। राष्ट्रपति भवन में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह आज और इस महीने की 15 तथा 22 तारीख को आयोजित नहीं होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह तथा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन की तैयारियों के कारण लिया गया है। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कार्य समिति की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्य समिति का मानना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगा।
पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हाल में हुए चुनाव से कांग्रेस पार्टी को नई ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्यों के स्तर पर चुनाव में प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करेगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीत हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी और उसे राज्य की दोनों सीटों के अलावा नागालैंड, असम और मेघालय में भी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देशभर में जबरदस्त समर्थन मिला है। श्री खड़गे ने कहा कि पार्टी इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ संसद के भीतर और बाहर मिलकर काम करेगी। बैठक में पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए समान चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला लिया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचक दल को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले समान चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 की प्रक्रिया देशभर में पूरी तरह से पारदर्शी और शुचितापूर्ण रही है और इस परीक्षा का कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए थे। परीक्षा में परीक्षार्थियों के ज्यादा अंक और ज्यादा टॉपर से संबंधित मुद्दों पर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि यह मुद्दा नीट परीक्षा के 4,750 केंद्रों में से उन 6 केंद्रों और 1,600 परीक्षार्थियों से संबंधित है जिनका समय गलत प्रश्नपत्र वितरित करने के कारण नष्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इन परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस अंकों की समीक्षा करेगी।
इसको फिर से एक रिविजिट करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जो पूरा इसको देखेगी कि जो ग्रीवांस डिसमिसल कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी उसके बेसिस पे एक बार फिर से उसको जो है पूरा एग्जामिन करेगी। 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपियर हुए थे इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4,750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे।
दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज सुबह बवाना स्थित मुनक नहर के 2 उपनहरों का दौरा किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि पिछले 7 दिनों से लगातार हरियाणा कम मात्रा में पानी भेज रहा है। सामान्यतः हरियाणा रोजाना मुनक नहर के जरिए दिल्ली के लिए 1050 क्यूसेक पानी भेजता है लेकिन अभी इसकी मात्रा गिरकर 840 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। सुश्री आतिशी ने कहा कि मुनक नहर से अगर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी कम मिलेगा तो इसका असर दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में हो रहे जल संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के लापरवाह रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हर छोटी छोटी बातों पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल तुरंत विधानसभा सत्र बुलाते हैं। आज दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से जनता जल संकट का सामना कर रही है लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। श्री सचदेवा ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को हरियाणा से मिल रही जल सप्लाई पर हरियाणा सरकार और दिल्ली भाजपा से खुली बहस या फिर सर्वदलीय बैठक बुलाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सुश्री आतिशी कल वजीराबाद बैराज और आज मुनक बरवाना नहर का निरीक्षण करने गई और वहां जाकर इस बात का झूठा शोर मचाया कि हरियाणा सरकार द्वारा पर्याप्त पानी नहीं भेजा जा रहा है लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वजीराबाद बैराज में पिछले 8 सालों से गाद नहीं निकाली गई जिससे वहां का स्टोरेज कम हो गया है। श्री सचदेवा ने कहा कि भीषण गर्मी में जल संकट से जूझ रहे दिल्लीवासी पीने के पानी के लिए दिन में कई कई घंटे टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में पानी की समस्या के बारे में जनता को गुमराह करने का कथित आरोप लगाते हुए दक्षिण दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसद और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि लोकसभा चुनावों में करारी हार के बावजूद इनके नेताओं के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ है।
श्री बिधूड़ी ने कहा कि जल मंत्री आतिशी लगातार झूठ बोल रही हैं कि हरियाणा द्वारा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जबकि हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट भी यह साबित कर दिया गया है कि वह दिल्ली को समझौते के अनुसार लगातार पानी दे रही है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया कि हरियाणा सरकार को कहा जाए कि वह दिल्ली के अतिरिक्त पानी दे। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को 127 क्यूसेक पानी देने की घोषणा की है। श्री बिदोड़ी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह फैसला गुरुवार को आया और हिमाचल से दिल्ली तक पानी पहुंचने में कम से कम 48 घंटे का समय लगता है, लेकिन फैसला आने के 12 घंटे बाद ही दिल्ली की जल मंत्री आदिति सिंह ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि दिल्ली को हिमाचल से छोड़ा गया पानी दिल्ली को नहीं मिला और हरियाणा से पानी रोक लिया गया। जगदीश वर्मा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अमन यादव।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली के शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा 6 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगी। अदालत ने कविता की न्यायिक हिरासत को 21 जून तक बढ़ा दिया है। उधर सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस पर विशेष अदालत 6 जुलाई को सुनवाई करेगी। इससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में एक नई चार्जशीट के आधार पर पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी में रहने वाले दो नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार कर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उनके कब्जे से 55 लाख रुपए की उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन जब्त की गई है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के उपायुक्त सतीश कुमार ने दी है।
श्री कुमार ने बताया कि अपराध शाखा के हेड कांस्टेबल अश्विन को हेरोइन के बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए निरीक्षक अक्षय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने दक्षिणी दिल्ली के मैदान गढ़ी में सावधानी पूर्वक निगरानी के बाद दो नाइजीरियाई आरोपी 27 वर्षीय अरमिद और 40 वर्षीय सलीफ को पकड़ लिया और उनके पास से 55 लाख रुपए मूल्य की 550 ग्राम अच्छी गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद की। हेरोइन मदगी के आधार पर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्री कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास कोई वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं है। वे अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और ड्रग्स तस्करी की गतिविधियों में शामिल थे। जगदीश वर्मा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
राजधानी दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई में आज तड़के भीषण आग लगने से 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख अतुल गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने की सूचना सुबह 3:38 पर मिली थी। मौके पर 16 अग्निशमन की गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आग एक पाइप में गैस रिसाव के कारण लगी थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री बढ़कर 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन के दौरान आज दिल्ली के नरेला में सबसे अधिक तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में कल केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पड़ोसी देशों के नेता बनेंगे विशिष्ट अतिथि। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। राष्ट्रपति गार्ड समारोह भी किया गया रद्द। कांग्रेस कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा नीट परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी। ग्रेस अंकों की समीक्षा के लिए समिति का किया गया गठन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।